एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जो सच कहूं तो उपन्यास जैसा लगता ही नहीं है।
हाँ बिल्कुल,
इसे पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे हम कोई खोई हुई रॉक डॉक्यूमेंट्री देख रहे हों
या किसी पुरानी मैगजीन के पन्ने पलट रहे हों।
सही काम, हम बात कर रहे हैं डॉनी वॉल्टन के शानदार उपन्यास द फाइनल रिवाइवल ऑफ ओपल एंड नेव की।
और ये सिर्फ संगीत की कहानी नहीं है।
नहीं बिल्कुल नहीं, ये कहानी है सच की, चुप्पी की और उस कीमत की जो कलाकार अपनी कला के लिए चुकाते हैं।
और इसकी जो सबसे बड़ी मतलब चालाकी है वो इसका फॉर्मेट है।
हाँ, ये कोई सीधी साधी कहानी नहीं है।
नहीं, ये एक फिक्शनल ओरल हिस्ट्री है, मतलब एक काल्पनिक मौखिक इतिहास।
अच्छा।
पूरी कहानी हमें किरदारों के इंटरव्यू, पुराने लेखों के अंशों और एडिटर के नोट्स के जरिए पता चलती है। और इसे लिखा है डॉनी वॉल्टन ने, जो खुद एक पत्रकार रही हैं।
उन्होंने तो रॉलिंग स्टोन के लिए भी काम किया है ना?
हाँ बिल्कुल, तो वो इस दुनिया को, संगीत की दुनिया को अंदर बाहर से जानती हैं। और शायद इसीलिए ये किताब इतनी असली लगती है।
यही तो इसकी खासियत है, ये फॉर्मेट हमें सिर्फ कहानी नहीं बताता बल्कि ये सवाल भी खड़ा करता है कि इतिहास असल में है क्या,
क्या वो जो हुआ या वो जो बताया गया।
बिल्कुल, और कौन किसकी कहानी सुना रहा है, ये बहुत मायने रखता है। तो चलिए इस अनोखी कहानी के दिल में उतरते हैं। ये ओपल और नेव आखिर हैं कौन?
ये समझिए कि 70 के दशक के संगीत की दुनिया के दो ध्रुव हैं।
दो ध्रुव?
हाँ, एक तरफ है ओपल जुअल, डिट्रॉइट की एक अश्वेत गायिका। लेकिन उसे सिर्फ गायिका कहना वो उसकी शख्सियत को कम आंकना होगा। वो आग है,
बेखौफ,
एकदम बेखौफ, अपने समय से बहुत आगे। उसका वो मुंडा हुआ सिर, मंच पर उसकी बेबाक एनर्जी, उसका अंदाज, वो किसी खांचे में फिट नहीं होती थी।
वो कलात्मक ईमानदारी की एक जीती जागती मिसाल थी।
और दूसरी तरफ है नेव चार्ल्स,
ब्रिटेन से आया एक गोरा संगीतकार।
हाँ, टैलेंटेड है, एम्बिशियस भी है और उसमें ओपल की असाधारण प्रतिभा को पहचानने की नजर भी है। वो ओपल के साथ मिलकर कुछ बड़ा बनाना चाहता है।
लेकिन?
हाँ, एक बहुत बड़ा लेकिन। वो उस नस्लीय भेदभाव और संघर्ष को कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाता जिसका सामना ओपल रोज करती है।
वो उसकी कला का साझेदार तो है पर शायद उसके दर्द का नहीं।
बिल्कुल सही। और इन दोनों की बिखरी हुई कहानी के टुकड़ों को जोड़ रही है संगीत पत्रकार एस सनी शेल्टन।
आज के समय में यानी 2016 में।
हाँ, सनी इन दोनों पर एक किताब लिख रही है। पूरी कहानी उसी की तहकीकात के जरिए हमारे सामने खुलती है। वो सिर्फ एक पत्रकार नहीं बल्कि एक जासूस की तरह है
जो दशकों पुरानी धूल के नीचे दबे सच को बाहर निकाल रही है। श्वेत विद्रोही गायिका और एक श्वेत महत्वाकांक्षी गीतकार, वो भी 1970s के अमेरिका में। ये जोड़ी तो शुरू से ही एक विस्फोटक मिश्रण रही होगी।
थी ही, इनकी शुरुआत न्यूयॉर्क की हलचल में होती है। नेव ओपल को एक क्लब में गाते हुए सुनता है और बस मंत्रमुग्ध हो जाता है।
और वो दोनों एक डुओ बना लेते हैं।
हाँ, और उनका संगीत बिल्कुल नया था, ताजा था, उसमें रॉक और सोल का एक अनोखा संगम था। लेकिन उस जमाने में एक इंटरेशियल जोड़ी होना
अपने आप में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था,
चाहे वे चाहें या ना चाहें।
और कहानी में एक और अहम किरदार की भी तो एंट्री होती है ना?
हाँ, जिमी कर्टिस, बैंड का करिश्माई ड्रामा।
और जिमी और ओपल के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है।
बहुत गहरा। जिमी सिर्फ ओपल का प्रेमी नहीं है बल्कि वो उन कुछ लोगों में से है जो उससे और उसकी लड़ाई को सच में समझते हैं। वो ओपल की ताकत भी है और एक तरह से इसकी कमजोरी भी।
और फिर आता है वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया, 1971 का रिविंगटन शोकेस।
वो सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं था, वो एक ऐतिहासिक घटना बन गया।
लेकिन गलत वजहों से।
बिल्कुल। उस रात मंच पर उनसे पहले एक दूसरा बैंड परफॉर्म कर रहा था जो अपने साथ परिसंघ का झंडा यानी कन्फेडरेट फ्लैग लेकर आता है।
अच्छा, ये झंडा, ये अमेरिका में गुलामी और नस्लीय नफरत का प्रतीक माना जाता है। सही है।
सबसे बड़ा और सबसे भद्दा प्रतीक, श्वेत वर्चस्व का प्रतीक। आज भी इसे लहराना एक बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर देता है।
और ओपल जैसी कलाकार जो कभी चुप नहीं रहती, वो इसे कैसे नजरअंदाज कर सकती थी?
कर ही नहीं सकती थी, लेकिन उसने जो किया वो और भी ज्यादा शक्तिशाली था।
उसने क्या किया?
वो चिल्लाई नहीं, उसने कोई भाषण नहीं दिया। जब उसकी बारी आई तो वो शांत होकर मंच पर गई, उस झंडे को उठाया और उसे एक खाली ड्रम स्टूल पर रख दिया।
बिना एक शब्द कहे,
बिना एक शब्द कहे उसने उस नफरत के प्रतीक को उसकी सही जगह दिखा दी। ये मौन का सबसे जोरदार विस्फोट था।
एक कमाल का साहसी कदम। लेकिन
भीड़ में मौजूद नफरत इस शांति को बर्दाश्त नहीं कर पाए
नहीं कर पाई।
ओपल की इस हरकत से भीड़ का एक हिस्सा वो पागल हो गया। नस्लवादी नारे लगने लगे और देखते ही देखते कॉन्सर्ट एक दंगे में बदल गया।
और उसी हिंसा के बीच,
उसी भयानक हिंसा और अफरा तफरी के बीच, श्वेत पुरुषों की एक भीड़ जिमी कर्टिस को घेर लेती है और उसे पीट पीट कर मार डालती है। एक पल में संगीत खत्म हो गया, सिर्फ एक चीख रह गई।
ये घटना एक, ये तो दिल दहला देने वाली है, लेकिन मुझे लगता है असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है।
हाँ, जब बैंड बिखर जाता है और दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं।
ट्रेजेडी के बाद की जो चुप्पी होती है वो अक्सर ट्रेजेडी से भी ज्यादा भयानक होती है।
और यही इस उपन्यास का दिल है। ट्रेजेडी के बाद मीडिया ओपल को कैसे पेश करता है, उसे एक आक्रामक, एक भड़काने वाली औरत के रूप में दिखाया जाता है।
सारा इल्जाम उस पर,
डार्बी उसे ही ठहरा दिया जाता है, उसे एक खलनायिका बना दिया गया।
और नेव, उसका हीरो, उसका पार्टनर, उसने क्या किया?
यहीं पर फेल्ड एलायशिप यानी विफल सहयोग का विचार बहुत पावरफुली सामने आता है।
नेव वो टूट जाता है, रिकॉर्ड लेबर उस पर दबाव डालता है कि वो ओपल से दूरी बना ले,
और नेव अपने करियर को बचाने के लिए
वो एक कमजोर सा बयान जारी कर देता है।
बहुत कमजोर, गोलमोल सा बयान। वो ओपल का साथ नहीं देता, वो चुप रह जाता है, और उसकी ये चुप्पी ओपल के लिए किसी भी गाली से ज्यादा चुभने वाली थी।
यहीं पर उनकी साझेदारी खत्म हो जाती है
हमेशा के लिए।
और ये बात आज भी कितनी रिलेवेंट है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, लेकिन यहाँ लेखक दिखा रहा है कि चुप रहना भी एक पॉलिटिकल चॉइस है,
और कभी कभी सबसे विनाशकारी भी।
तो इस बिखराव के बाद दोनों की जिंदगियां किस दिशा में गई?
बिल्कुल, दो अलग अलग दिशाओं में। नेव चार्ल्स एक बहुत बड़ा सोलो स्टार बन जाता है, उसके गाने चार्ट्स पर टॉप करते हैं, उसे अवार्ड्स मिलते हैं,
वो दौलत और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाता है।
हाँ, और वहीं दूसरी तरफ ओपल गुमनामी के अंधेरे में खो जाती है। वो अमेरिका छोड़कर पेरिस चली जाती है।
अपनी कला से समझौता तो नहीं करती, लेकिन मुख्य धारा की दुनिया उसे भुला देती है।
बिल्कुल, एक की सफलता दूसरे की खामोशी पे बनी थी।
लेकिन जैसा कि हमने कहा, कहानियां खत्म नहीं होती। दशकों बाद जब सनी अपनी किताब लिख रही है, तब एक ऐसा राज खुलता है जो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देता है।
हाँ, अपनी रिसर्च के दौरान सनी को सबसे पहले तो ये पता चलता है कि जिस ड्रमर जिमी कर्टिस की उस रात हत्या हुई थी, वो उसके पिता थे,
जिनसे वो कभी मिली नहीं पाई।
हाँ, और ये जानते ही उसकी ये पेशेवर खोज एक बहुत ही निजी मिशन बन जाती है।
उसे अब सिर्फ कहानी नहीं, अपने पिता के लिए इंसाफ चाहिए।
सही बात है, और ये खोज उसे एक भयानक सच तक ले जाती है, एक ऐसा सच जो नेव चार्ल्स की चमचमाती विरासत के नीचे दफन है। वो कोई और नहीं बल्कि नेव की पत्नी डायन का सगा भाई था।
क्या?
और इससे भी भयानक बात ये है कि नेव और उसकी पत्नी दोनों ये बात दशकों से जानते थे।
उन्होंने इस सच को छुपाए रखा
अपने परिवार को बचाने के लिए, इस सच को हमेशा के लिए दफना दिया था। नेव की पूरी सफलता, उसकी पूरी जिंदगी इस भयानक राज और चुप्पी की नींव पर खड़ी थी।
ये तो धोखा और विश्वासघात की इंतहा है। ये सिर्फ कायरता नहीं थी, ये एक अपराध में सक्रिय भागीदारी थी। तो उपन्यास का जो शीर्षक है द फाइनल रिवाइवल, उसका असली मतलब क्या है? क्या वो फिर से एक साथ मंच पर आते हैं?
नहीं, जब सनी ये सच लेकर नेव का सामना करती है और ओपल को इस धोखे का पता चलता है, तो वो किसी भी तरह की रियूनियन टूर के विचार को हमेशा के लिए खत्म कर देती है।
वो समझ जाती है कि उसका साथी सिर्फ कायर नहीं था,
बल्कि एक ऐसे राज का हिस्सेदार था जिसने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी को जन्म दिया।
तो फिर अंतिम पुनरुद्धार क्या है?
सच्चा पुनरुद्धार मंच पर वापसी नहीं है,
बल्कि सच्चाई का पुनरुद्धार है।
बिल्कुल, उपन्यास का अंत सनी की किताब के छपने की कगार पर होता है, वो किताब जो दुनिया के सामने ओपल की कहानी का असली सच लाने वाली है। तो ओपल का अंतिम पुनरुद्धार उसकी सच्चाई और उसकी विरासत का पुनरुद्धार है।
दुनिया आखिरकार उसे एक साहसी कलाकार के रूप में जानेगी जिसने नफरत का सामना किया, अपनी कला से समझौता नहीं किया, और जिसकी उसे एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी।
सही,
इस कहानी की सबसे दमदार बात यह है कि इसके थीम्स आज भी गूंजते हैं, नस्लवाद, कला की कीमत, सच की लड़ाई।
ऐसा लगता है जैसे ये कल ही लिखी गई हो। संगीत उद्योग में नस्लवाद का मुद्दा तो बहुत साफ है। उपन्यास दिखाता है कि उद्योग को ओपल का संगीत चाहिए था, उसकी आत्मा चाहिए थी, लेकिन उसका संघर्ष नहीं।
उन्हें उसकी आवाज का जादू चाहिए था, लेकिन उसकी राजनीतिक सच्चाई नहीं।
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे अश्वेत कलाकारों की प्रतिभा का अक्सर शोषण किया जाता है, लेकिन जब वो अपनी आवाज उठाते हैं तो उन्हें चुप करा दिया जाता है।
और इतिहास और स्मृति का विषय भी, उस मौखिक इतिहास वाले फॉर्मेट पर वापस जाएं तो ये साफ हो जाता है कि इतिहास कोई एक ठोस चीज नहीं है।
इसे शक्तिशाली लोग अपने हिसाब से लिखते और बेचते हैं। नेव ने दशकों तक कहानी का अपना संस्करण बेचा, जबकि ओपल की सच्चाई अनसुनी रह गई,
जब तक कि सनी ने उसे खोदकर नहीं निकाला।
और अंत में अश्वेत महिला का क्रोध, समाज ने ओपल के गुस्से को आक्रामक और खतरनाक का लेबल दिया,
जैसा कि अक्सर होता है।
हाँ, लेकिन ये उपन्यास उसके क्रोध को अन्याय के खिलाफ एक जायज, एक शक्तिशाली और जरूरी प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है।
उपन्यास कहता है कि जब अन्याय हो रहा हो तो चुप रहना कोई गुण नहीं है,
बोलना और गुस्सा करना तुम्हारा हक है।
ये कहानी हमें दिखाती है कि कला और कलाकार को राजनीति और मंच को अलग नहीं किया जा सकता, और ये कि चुप्पी कभी भी तटस्थ नहीं होती, उसकी भी एक कीमत होती है जो कोई ना कोई चुकाता है।
और ये भी कि सच्ची विरासत प्रसिद्धि या दौलत से नहीं बनती, वो सच्चाई और साहस से बनती है, भले ही दुनिया उसे पहचानने में दशकों लगा दे।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए कतर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।